भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भक्त भगवान कृष्ण के भक्त निष्काम अतएव अतः शांत शांत भुक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, मुक्ति भौतिक क्रियाओं से मुक्ति की, सिद्धि योगिक सिद्धियों की पूर्णता की, काम कामी जो इच्छा प्रकट करते हैं, सकली सभी अशांत शांत नहीं है। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जो कृष्ण के भक्त हैं वो निष्काम होते हैं, इसीलिए वो शांत रहते हैं। जो कर्मी होते हैं वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और योगी योगिक सिद्धियां चाहते हैं, इसीलिए वे कामी रहते हैं और वो शांत नहीं हो पाते। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के भक्त को और कोई नहीं इच्छा होती सिवाय कृष्ण की सेवा करने के। तथाकथित मुक्त पुरुष के भी बहुत सारी इच्छाएं होते हैं, भौतिक कर्मकांडी जो है वो भौतिक चीज़ें चाहते हैं, ज्ञानी भगवान में लीन होना चाहते हैं, और योगी योगिक सिद्धियां और जादू दिखाना चाहते हैं। ये सब कामी हैं, क्योंकि भगवान में ये कुछ चाहते हैं, इनको शांति नहीं मिल सकती। भगवद गीता में शांति का सूत्र बताया गया है, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति समझ जाता है कि सारे ब्रह्मांड में कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे ही सारे यज्ञों के स्वामी हैं, तपस्या के स्वामी हैं, उसी को शांति प्राप्त हो सकती है। जो ये समझ जाता है कि कृष्ण ही स्वामी हैं, कृष्ण ही मालिक हैं और कृष्ण ही परम मित्र हैं, वो निष्काम हो जाता है। एक कृष्ण भक्त जानता है कि कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, रक्षक हैं, और जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती के पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और कृष्ण ये वचन दे रहे हैं, इसीलिए भक्त जो है वो कृष्ण में ही रहते हैं और कोई भौतिक लाभ नहीं चाहते। भक्त के लिए जो बैकग्राउंड है वो सबसे अच्छा है। भक्त को और कोई चीज़ की इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहते हैं। एक कृष्ण भक्त को और कोई इच्छा नहीं होती, उसकी रक्षा हमेशा कृष्ण करते हैं। अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्त जो है वो इच्छा से मुक्त होते हैं, क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं हर स्थिति में। ये ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण से कुछ मदद आशा करते हैं, वो कृष्ण के ऊपर ऐसे निर्भर रहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। एक भक्त, एक बालक को पता नहीं होता कि माता पिता से कैसे सेवा की आशा की जाए, लेकिन हमेशा उसके माता पिता रक्षा करते हैं, इसको निष्काम कहा गया है। का निष्कर्ष ये है कि जो भगवान कृष्ण की सेवा से संतुष्ट होते हैं वही निष्काम बन सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है, संतुष्ट है कृष्ण में, उनके पतन की कोई संभावना नहीं है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्री वार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुधाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते जयतां सुरतोर्पंगोर् मम मंदा मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद् वृंदारण्य कल्पद्रुमादौ श्रीमाद् रत्नागर सिंहासनस्थौ शिशिराधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टलाभी सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु स्वनेर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे हरे
मैं आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता हूँ जिससे कि मैं श्रील प्रभुपाद के संदेश को दोहरा सकूँ अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। आज ये जो श्लोक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, उसमें चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश करते हैं। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय पार्षदों में से एक हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश करते हैं और उस उपदेश के दौरान वो बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों में कर्मी श्रेष्ठ है, कर्मी से ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञानी है और ज्ञानी से ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त है। एक भक्त का मतलब है जिसने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया है वो सच्चा भक्त है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, ऐसा करने से तुम निश्चित मेरे को प्राप्त होगे। ये भगवान कृष्ण का वचन है भगवद गीता में। कृष्ण में मन लगाना यही जीवन का लक्ष्य है, और एक सच्चा भक्त वो है जिसकी और कोई इच्छा नहीं है सिवाय कृष्ण की सेवा के और सिवाय कृष्ण नाम के। तो आज के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भुक्ति मुक्ति या सिद्धि चाहते हैं वो अशांत रहते हैं, क्योंकि उनको बदले में कुछ चाहिए। जब तक व्यक्ति को कोई चीज़ चाहिए तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, वो शांत नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज बहुत सरल उपाय बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो बहुत ही सरल उपाय है, और वो है कि सुखी होने का प्रयास त्याग देना। जब तक हम सोचते हैं कि मैं सुखी हो सकता हूँ तब तक सुखी नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति आशा करे कि मैं सरोवर में या नदी में स्नान करूं और गीला नहीं हूं, या कोई व्यक्ति आशा करे कि धूप में रहकर मुझे ठंडक महसूस हो, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे ये दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। जो कर्मी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो अपने प्रयास से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मी अपने प्रयास से स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज्ञानी भगवान में लीन होना चाहते हैं, योगी है कुछ योगिक सिद्धियां दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक भक्त इन सब चीज़ों को तुच्छ मानते हैं। चलो प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक कोई योगी हिमालय में जाते हैं, अनेक वर्ष तपस्या करते हैं और लौट कर आते हैं, और लोग उनसे पूछते हैं कि आपने क्या प्राप्त किया। बोले, मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, वो मैं आपको बताऊँगा। और वो गाँव के सभी लोगों को नदी के किनारे ले जाते हैं और सबको वहाँ बिठाकर स्वयं पानी पर चलने लगते हैं। बिना नौका के वो नदी के ऊपर चलते हुए जाते हैं और पार करके फिर वापस आ जाते हैं, और बहुत से लोग उसकी वाह वाह कार करते हैं, जय हो स्वामी जी, जय हो, बहुत अच्छा। लेकिन एक छोटा बच्चा कहता है कि स्वामी जी, आपने सिद्धि प्राप्त की है, इसकी कीमत 2 रुपये है। आपने 20 साल में तपस्या करके जो प्राप्त किया है उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपये है। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या बोल रहे हैं, 20 साल में 2 रुपये है, अच्छी अर्निंग। तो उन्होंने पूछा, ये कैसे? तो उन्होंने बताया, जो आपने काम करके दिखाया वही नाव वाला जाने का 1 रुपया लेता है, आने का 1 रुपया लेता है। तो योगिक सिद्धियां जो हैं ये भक्त को आकर्षित नहीं करते, ये जादू दिखाना। महाराष्ट्र में भी कई बाबा हैं जो राख से सोना निकालते हैं या सोना से राख निकालते हैं, और मूर्ख व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भक्ति में डिस्ट्रैक्शन है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब महाप्रभु श्रीधर खोलावेचा को बोलते हैं कि तुम कुछ वरदान मांगो, तो श्रीधर खोलावेचा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कहते हैं, मैं तुमको अष्ट सिद्धियां देने को तैयार हूँ, अनिमा लघिमा प्राप्ति इशिता वशिता, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना, या हल्का बन जाना, हवा में उड़ना बिना एयरप्लेन के। लेकिन श्रीधर बोलते हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सब हमें कृष्ण के चरणों में मन लगाने से रोकते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है गौरंग महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करना। जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं प्रयाग में, तब वे एक श्लोक की रचना करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर तुषे नमः। इसका अर्थ है कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो महावदन्याय है, जो बहुत ज्यादा ही उदार हैं और वो कृष्ण प्रेम सबको प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु का अवतार बहुत विशेष है, क्योंकि इस अवतार में भगवान बिना मांगे हुए कृपा प्रदान करते हैं। आज मैं आपको एक पुस्तक से बताना चाहूँगा जो कि बहुत विशेष है, इसका नाम है चैतन्य चंद्रामृत। इसके लेखक का नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में गए थे उस समय वे श्रीरंगम पहुंचे, जहां पर रंगनाथ जी का बड़ा विशाल और सुंदर मंदिर है। श्रीरंगम में वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में ठहरे, जिनके पिताजी का नाम वेंकट भट्ट था और जिनके चाचा का नाम प्रबोधानंद सरस्वती था। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी है चैतन्य चंद्रामृत, और इस पुस्तक में वो बताते हैं महाप्रभु की महिमा कि कैसे महाप्रभु की कृपा का फल है। महाप्रभु की कृपा जो है सब अवतारों से ज्यादा है। जैसे लोचनदास ठाकुर कहते हैं, सब अवतार सारे शिरोमणि केवल आनंद कंद। सारे अवतारों के शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु जो है, जो भक्ति दे रहे हैं वो आनंद कंद है, सब आनंदों से भरी हुई है, और वो भक्ति सब जातियों के सब व्यक्तियों को आसानी से मिल सकती है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, महाप्रभु की कृपा सबके लिए। भगवान नरसिंह देव ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु का वध किया, लेकिन उसमें उतनी महानता नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है लेकिन उसमें इतनी उदारता नहीं है। भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके धरती को वापस अपने स्थान पर रखा, लेकिन वो उतनी महानता नहीं है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण कुंभकर्ण एंड कंपनी का वध किया, लेकिन वो इतनी महान चीज नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया, ये सब चीजें तुच्छ हैं श्री गौरंग महाप्रभु की उदारता के सम्मुख, क्योंकि श्री गौरंग महाप्रभु कृपा से जगाई मधाई से लेकर रूप सनातन सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। इसीलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। जो गौरंग महाप्रभु का अवतार है वह सारे अवतारों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अवतार में भगवान न मांगने वाले व्यक्ति को जो कृपा नहीं लेना चाहते उनके पीछे दौड़ते हैं और उनको हरि नाम प्रदान करते हैं। कभी कभी कोई उदार व्यक्ति होता है, कोई डोनेशन देता है, चलो भाई मेरी तरफ से आज भंडारा है, या मैं मुफ्त में कंबल बांट रहा हूँ सर्दी के मौसम में, या दवाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति को देता है जो मांगने आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं कि जो व्यक्ति नहीं लेना चाहता उसके पीछे पीछे जाके उसके जेब में देते हैं, हरि बोल लो लो। इसलिए गौर निताय का अवतार जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। परम करुणा पहु दुई जान निताय गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि सारे अवतारों में श्रेष्ठ जो है गौरंग और नित्यानंद है, क्योंकि वो फल कृष्ण प्रेम सबको प्रदान करने वाले। प्रबोधानंद सरस्वती ने इस किताब में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है जो उनकी महिमा का वर्णन करता है। वे कहते हैं, कैवल्यम नरकायेत त्रिदश पुर आकाश पुष्पयेत दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोक्त दांस तमस्त्रय। जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति हो गई है उसको कैवल्य या भगवान में लीन होना वो नरक के समान लगता है। निर्विशेषवादी बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कैवल्य प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है उसको मुक्ति नरक के समान महसूस होती है, क्योंकि मुक्ति जो सायुज्य मुक्ति है इसका अर्थ है कि भगवान में लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को खो बैठना। लेकिन भक्त ये नहीं चाहते, भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं। अगर हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो सेवा करने का अवसर नहीं होगा। ब्रह्मज्योति में लीन होना ये निर्विशेषवादियों की गति है, लेकिन वो गति तो असुरों को भी मिलती है। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल के शरीर से उनकी आत्मा निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। तो इसलिए मुक्ति ये भक्तों के लिए वांछनीय वस्तु नहीं है। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति का अर्थ है भगवान की ज्योति में रहना, ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में सब कुछ शांति है लेकिन आनंद नहीं है, सत है लेकिन चित्त और आनंद नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जब जीव रहता है उसको ऐसी स्थिति है कि मान लो कोई कमरे में रखा जाए
कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब शांत जगह, और आपको भोजन खिड़की से फेंक दिया जाए, लेकिन कोई व्यक्ति का संग नहीं, सिर्फ अकेले रहना, आप कितनी देर रह सकेंगे इसी जगह में? कई बार घर में झगड़ा होने के बाद आपको लगेगा कि चलो यही अच्छा है, लेकिन कितनी देर रह सकते हैं? जीव का स्वभाव है वह संग में रहना चाहता है। इसलिए भक्त ये मानते हैं कि मुक्ति से ज़्यादा अच्छा है कि मैं नरक में भी रहूं लेकिन कृष्ण के भक्तों के संग में रहूं। भक्तों का संग जहां पर है वही वैकुंठ है। तंदेर चरण से भक्त सनिवास, जनमे जनमे होए ए अभिलाष। इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त की इच्छा होती है कि भगवान के चरणों, भगवान के भक्तों के संग में रहें और उनके संग में कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भक्त को भगवान में लीन होना पसंद नहीं है, वो भगवान की सेवा करना चाहता, चाहे वो नरक में हो या स्वर्ग में हो। नारायणा परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। जो नारायण परायण है, जो कृष्ण भक्त हैं, उनको हर स्थिति बराबर लगती है, चाहे स्वर्ग हो या नरक हो, वैकुंठ हो या पूना हो। अगर आप पूना में रहकर कृष्ण नाम ले रहे हो तो आप गोलोक में हो, और अगर आप पूना में रहकर इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे हो तो आप माया में हो। अपनी चेतना के अनुसार व्यक्ति जान सकते हैं। दूसरी लाइन में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, त्रिदश पूर आकाश पुष्पायते। जिस व्यक्ति को महाप्रभु की कृपा मिली है उसको लगता है कि स्वर्ग का सुख ये आकाश पुष्प के समान है। अभी आप जानते हैं आकाश में कौन से रंग के पुष्प होते हैं, राइट? कौन से पुष्प होते हैं आकाश में? पीले, लाल? आकाश में पुष्प होते ही नहीं है, काल्पनिक है। तो भक्त को लगता है कि स्वर्ग का राज्य मिलना या इस धरती पे ऊंची पदवी मिलना, ये सब आकाश पुष्प है। फैंटास्मगोरिया इंग्लिश में बोलते हैं, फैंटास्मगोरिया, विलो विस्प इमेजिनरी, काल्पनिक। इसका दूसरा उदाहरण है घोड़ा डिम्ब। पिछली बार मैंने बताया था घोड़ा डिम्ब, नहीं बताया? आप जानते हैं घोड़े के अंडे कौन से रंग के होते हैं? नहीं? आप भूल गए शायद पूर्व योनियों को। अरे घोड़े के अंडे कौन से रंग के होते हैं? घोड़े के अंडे होते ही नहीं है। अरे तो संसार का सबसे बड़ा सुख है वो घोड़ा डिम्ब है। कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप भक्ति मत करो, आओ यहाँ पर हम आपको अच्छा धन देंगे, अच्छा बंगलो होगा, बस भक्ति छोड़ दो, तो आपको मन में सोचना चाहिए ये मुझे क्या दे रहा है? घोड़ा डिम्ब। धन जो है वो घोड़ा डिम्ब है, और संसार के सुख वो बड़े घोड़ा डिम्ब है, और स्वर्ग का सुख सुपर घोड़ा डिम्ब है। तभी कौन सा घोड़ा डिम्ब अच्छा है इसमें से? लोग झगड़ रहे हैं, ओ इसको 10,000 घोड़े के डिम्ब मिल रहे हैं हर महीने, मुझे सिर्फ 5,000 मिल रहे हैं। ये काल्पनिक चीज़ है। ऑफकोर्स अगर धन है, भगवान के मंदिर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने आप के सुख के लिए धन, जन, स्त्री, मान सम्मान, ये सब घोड़ा डिम्ब है, ये मूर्खता है, ये काल्पनिक है। बाइबल में कहते हैं दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ब्रिज, यू पास ओवर इट, डू नॉट बिल्ड अ हाउस ऑन इट। ये दुनिया एक ब्रिज के समान है, उस ब्रिज से आपको नदी पार करना है। अब ब्रिज पे जा रहे हैं अपने मोटरसाइकिल पे या कार पे, तो आप सोचते नहीं कि यहीं पे बैठ जाया जाए, ये ब्रिज सिर्फ पार करने के लिए। तो जीवन है भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक जगत के लिए ब्रिज है, बीच में नहीं रुकना है, इस दुनिया से आसक्त नहीं होना। जो व्यक्ति महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसको एक ही लक्ष्य रखना है कि मुझे कृष्ण नाम लेना है, और बाकी सब चीज़ें काल्पनिक है। त्रिदश पूर आकाश पुष्पेति, और इंद्रियां, जनरली इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। तार मदे जीवाती लोभमय सडुरमति, इंद्रियों को वश में करना लोभमय है, बहुत सडुरमति है। इस संसार में बंधन का मुख्य कारण है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये इंद्रियां सर्प के समान है। लेकिन जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली है उसके लिए इंद्रियां ऐसे बन जाते हैं कि कोई सांप हो जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, कोई जहरीला सांप है, भयानक सांप जिसके दांत तोड़ दिए, तो फिर कोई खतरा नहीं रहता। जिसको महाप्रभु कृपा मिली है वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, और उसको कीट महेंद्र आदि, उसको ब्रह्मा का पोस्ट, इंद्र का पोस्ट, उसको ऐसा लगता है कि ये कीड़े के समान। इसको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो गई है, उसको इंद्रदेव पे दया आती है। जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, उसको लगता है कि इंद्र कितना अभागा है, मैं तो गौरंग को याद करके गोलोक वृंदावन जा रहा हूँ और बेचारा इंद्र कहाँ फंस गया है, वो अपने पारिवारिक बंधनों में, स्वर्ग के सुखों में बंधा हुआ है। भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को इन सब भौतिक आसक्तियों को त्याग देना चाहिए और कृष्ण के चरणों में अनुराग जागृत करना चाहिए। विषय छाड़ी या शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। अब सारी इंद्र तृप्ताओं की इच्छाओं को त्याग करके मुख से पुकारना चाहिए हरि हरि। पिछले सप्ताह आप लोग जोर से बोल रहे थे, आज धीरे बोल रहे हैं, जोर से बोलिए हरि हरि। भगवान हरि का नाम इतना मंगलकारी है, इसलिए और जोर से बोलिए हरि हरि। भगवान हरि के नाम से ही धीरे धीरे सब भौतिक इच्छाओं का नाश हो जाती। तो प्रबोधानंद सरस्वती का सेंटेंस है कि ब्रह्मा जी, इंद्र और बड़े बड़े देवताओं का पोस्ट भी तुच्छ लगता है उस व्यक्ति को जिसको भगवान गौरंग की कृपा प्राप्त हो गई है। मैं कुछ प्रबोधानंद सरस्वती के पुस्तक से महाप्रभु की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वे कहते हैं महाप्रभु की सुंदरता के बारे में, कंदर्पादि सुंदरः। महाप्रभु जो हैं कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं। जैसे हम श्याम सुंदर के बारे में कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे श्याम सुंदर कृष्ण कंदर्प से ज्यादा सुंदर हैं, वैसे गौरंग महाप्रभु कंदर्प से ज्यादा सुंदर है। क ये शब्द ब्रह्मा जी के लिए उपयोग होता है और दर्प यानी अभिमान, तो कंदर्प बोला जाता है कि वो इतना सुंदर है कि ब्रह्मा जी के अभिमान को भी नष्ट करने वाले हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कामदेव से ज्यादा आकर्षित हैं। दूसरा उदाहरण दिया गंगा का, महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु का स्पर्श वो गंगा से भी ज्यादा शुद्ध करने वाला है। गंगा जो व्यक्ति उनमें स्नान करता है उसको पवित्र बनाते हैं और वो व्यक्ति के सब पापों को दूर कर देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा जो है वो न केवल पापों को दूर करते हैं बल्कि पाप करने की इच्छा को भी नष्ट कर देते हैं। कई बार लोग गंगा में स्नान करते हैं, अपने सारे पाप वहीं पर छोड़ देते हैं लेकिन फिर जाकर पाप करते हैं। लेकिन महाप्रभु की कृपा जो है वो गंगा धारा के समान है और वो न केवल पापों को दूर करने वाली है, पाप करने की प्रवृत्ति या इच्छा को भी दूर करने वाली। जैसे महाराज भागीरथ ने कई वर्ष तपस्या की हिमालय में और गंगा माता को धरती पर आने के लिए प्रेरणा दी, उनको निवेदन किया, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा को एक गंगा बहाई। जैसे हिमालय से गंगा बहती है कलकत्ता की तरफ, श्रील प्रभुपाद ने मायापुर से गंगा बहाई भारतवर्ष, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सब जगह पर। और सब लोग गा रहे हैं आज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा उदाहरण दिया है महाप्रभु की कृपा चंद्रमा से भी ज्यादा ठंडक पहुंचाने वाली, मोर कूलिंग एंड सूदिंग देन द मून्स रेस, चंद्रमा की किरण से भी ज्यादा ठंडक पहुंचाने वाली। चंद्रमा स्पेशली पूर्णिमा की रात्रि पर अंधकार को दूर करता है और ठंडक पहुंचाता है। इसी तरह से गौरंग महाप्रभु की कृपा हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है। और इस संसार में रहने से जो दावाग्नि है, संसार दावा नललीढ़ लोकान, ये संसार की जो दावाग्नि जल रही है हमारे हृदय में, उसको महाप्रभु की कृपा जो चंद्रमा के समान है वो उसको शांत करती है। चौथा उदाहरण दिया है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है अमृत से भी ज्यादा मिठास वाली है। अमृत धरती पर नहीं लेकिन देवताओं पर, देवलोक में, स्वर्ग में अमृत पान किया जाता है।
लेकिन अमृत पान करने के बाद भी देवता आपस में झगड़ते हैं और उनके अंदर आपस में ईर्ष्या की भावना होती है। लेकिन जिसको गौरहरि के चरण कमल का अमृत मिलता है वो ईर्ष्या से और अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं। हम भागवत में पढ़ते हैं कैसे देवताओं के बीच भी आपस में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीज़ें देवताएं करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, नहीं तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, लेकिन सत्य यह है कि देवताओं को ये जो अमृत मिलता है, अमृत पीने के बाद भी उनको डर लगता है, कभी कभी असुर आ जाते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन जिसने गौरंग महाप्रभु के चरण कमलों का अमृत पान किया है वो निर्भय हो सकता है। भज हूँ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार, श्री कृष्ण नंदनंदन या शची नंदन, इनके चरणों का जिसने आश्रय लिया है वो वास्तव में अभय बन सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरंगेर दूती पद जार धन संपद से जाने भगति रस सार। इस भजन में कहते हैं कि गौरंगेर दूती पद, जिसने गौरंग महाप्रभु के चरण कमल का आश्रय लिया, जार धन संपद, जिसने दान लिया कि गौरंग के चरण कमल ही सब कुछ है, से जाने भक्ति रस सार, वो भक्ति के एसेंस को जानता है, भक्ति का सार, भक्ति का सार है गौरंग के चरण कमल, हरि नाम, हरि कथा, वैष्णव का संग। जे गौरंगेर नाम लोए तार होए प्रेमोदय, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो गौरंग का नाम लेता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। आप जोर से पुकारिए, गौरंगा जय सचिनंदन गौर हरि। एक बार जगन्नाथ पुरी में जब महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे गंभीरा में, अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर और सारे भक्त बाहर एकत्र हुए और अद्वैताचार्य सारे भक्तों से कहने लगे, आज हम और किसी अवतार का गुणगान नहीं करेंगे, आज हम कृष्ण का भी नाम नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ गौर अवतार का गुणगान करेंगे, आप सब मेरे पीछे बोलो। अद्वैत आचार्य बोलने लगे भक्तों को कि आप सब मेरे पीछे गाओ, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। सारे भक्त जोर जोर से पुकार रहे थे और महाप्रभु अपने कमरे में सुन रहे थे। और आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं था अपनी महिमा सुनना, एक्चुअली उनको अच्छा लग रहा था लेकिन उनको दिखाना था मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो भगवान है लेकिन भक्त के मूड में है। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर आए और उन्होंने देखा कि सब मेरा नाम गा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान का नाम छोड़कर, कृष्ण का नाम छोड़कर। उन्होंने श्रीवास को पुकारा, श्रीवास, श्रीवास पास में आए, आप एक पंडित विद्वान हो, आप सब कुछ शास्त्रों को जानने वाले हो, कृष्ण का नाम छोड़कर मेरा नाम ले रहे हो, क्या बात है, क्या आप जानते नहीं हो कृष्ण की सर्वोत्तमता? श्रीवास अपने हाथों से सूरज की ओर देखकर ऐसे हाथ करने लगे। महाप्रभु ने पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम इस तरह से हाथ कर रहे हो? शिवास बोले कि मैं अपने हाथों से सूरज को ढकने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं अपने हाथों से सूरज को ढक भी लूं लेकिन आप अपनी महिमा को नहीं छिपा सकते, आप किसको किसको रोकोगे, हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक सब गाएंगे जय सचिनंदन गौर हरि। इस तरह से महाप्रभु कुछ बोल नहीं पाते और अपने भक्त से पराजित हो जाते। प्रबोधानंद सरस्वती और एक उदाहरण देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का उदारता है वो कल्पवृक्ष से भी ज्यादा है। कल्पवृक्ष आप समझते हैं, कल्पवृक्ष जिसके नीचे आप जाकर जो भी मांग लो वो मिल जाता है। पुणे में नहीं है कल्पवृक्ष, नहीं तो हम जाके बोलते हैं कि मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपया दे दो। इसलिए आप सबको प्रयास करना जरूरी है जिससे कि हम राधा कुंज बिहारी या राधा वृंदावन चंद्र के लिए सेवा कर सके। तो कल्पवृक्ष जो व्यक्ति उसके पास आकर जो मांगता है वो चीज वो प्रदान करता है। लेकिन महाप्रभु इतने उदार हैं कि जो नहीं मांगता उसको भी कृष्ण प्रेम देते हैं, इसलिए महाप्रभु कल्पवृक्ष से भी ज्यादा उदार हैं। दूसरा उदाहरण वो करते हैं माता से। एक माँ अपने बच्चों से स्नेह करती है, ऐसे गौरंग महाप्रभु हम सब जीवात्मा जो उनके संतान हैं उनके प्रति स्नेह भावना रखते हैं। लेकिन अंतर यह है कि एक माता का स्नेह जो है वो सिर्फ अपने संतान के लिए होता है ज़्यादा, लेकिन महाप्रभु का स्नेह सारे जीवात्माओं के लिए है, चाहे वो पुरुष शरीर में हो, स्त्री में, कीट में, गधे योनि में, या देवता योनि में, या अनंत कोटि ब्रह्मांड में, जहाँ भी जीव हैं, चाहे वो जीव स्वर्ग में इंद्र तृप्ति कर रहे हैं या नरक में दुख भुगत रहे हों, महाप्रभु की कृपा सबके लिए है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें प्रदान किया वो कृपा हम सबको दें। ये प्रथम ड्यूटी है भारतवासियों की। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। इसे भारतवर्ष में जन्म लिया उसका कर्तव्य है कि कृष्ण भक्ति सबको बांटे अपनी योग्यता के अनुसार। और तरीका क्या है, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु। महाप्रभु की कृपा सबको मिल सकती है कृष्ण नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक सुंदर बात प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, एक माता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं लेकिन वो प्रेम शारीरिक स्तर पर होता है, थोड़े दिनों बाद या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है या माता की मृत्यु हो जाती है और वो प्रेम अपूर्ण रह जाते हैं। लेकिन महाप्रभु का जो प्रेम है हम सब जीवात्माओं के प्रति वो शाश्वत प्रेम है, इटर्नल लव है। और वो प्रेम जागृत हो सकता है श्रवण और कीर्तन से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबुनय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कुरिय उदय। कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है शाश्वत रूप से, और वो जागृत होता है श्रवण करने से, कृष्ण कथा सुनने से और कृष्ण नाम लेने से। प्रबोधानंद सरस्वती एक और सुंदर श्लोक में महाप्रभु का गुणगान करते हैं। वे कहते हैं, मैं उन महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता हूं जो भी कोई व्यक्ति उनको देखता है, स्पर्श करता है, या उनका गुणगान करता है, या जो उनको स्मरण भी करता है। सिर्फ अगर आप महाप्रभु को स्मरण भी करते हैं तो महाप्रभु उसको वो फल प्रदान कर देते हैं जो कि सबसे महान है, कृष्ण प्रेम। महाप्रभु भक्तों का उद्धार अलग अलग रूप से करते थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है आवेश और आविर्भाव और साक्षात, इस तीन अलग तरीके से लोगों को कृपा मिलती। साक्षात यानी जब महाप्रभु स्वयं जाते, जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु निवास करते, जो भी जीव उनसे मिलने आते उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते। जब महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, तिरुपति, मंगलगिरी, रामेश्वरम और कोल्हापुर, पंढरपुर, नासिक, ये सब स्थानों में जहाँ जहाँ जाते लोगों कृष्ण प्रेम प्रदान करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि जहाँ भगवान नहीं जाते वो किसी भक्त के शरीर में आवेश होता उनका, अर्थात भगवान उनके शरीर में प्रवेश करते और वो भक्त वही कार्य करते जो भगवान का कार्य है। उसमें ऐसे एक भक्त थे जिसका नाम था नकुल ब्रह्मचारी। आज मैं आपको उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नकुल ब्रह्मचारी ये अंबुया मुलुको नाम के स्थान पर रहते थे और बहुत ही शुद्ध भक्त थे। महाप्रभु उनके शरीर में विशेष लीला करते, नकुल ब्रह्मचारी प्रेम से कृष्ण नाम पुकारते, कभी हंसते कभी गाते, पागल की तरह रोते और हमेशा पुकारते रहते हरि हरि। उनके शरीर में एक दिव्य प्रकाश था, जैसे महाप्रभु के बारे में कहते हैं सुवर्ण वर्ण हे मांगो, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन गोल्डन लस्टर, वैसे ही प्रकाश नकुल ब्रह्मचारी के शरीर से था। जिससे भी मिलते वो उनको कहते कृष्ण नाम लो कृष्ण नाम लो। शिवानंद सेन महाप्रभु के दूसरे भक्त थे, उनको समाचार मिला कि नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में महाप्रभु लीला कर रहे हैं, तो शिवानंद सेन परीक्षा लेना चाहते थे, उनको विश्वास नहीं था। वो सोच रहे थे कि अगर इनके हृदय में सही में चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँगा कि भरी सभा में जहाँ पर हजारों हजारों भक्त हैं नकुल ब्रह्मचारी प्रवचन कर रहे हैं, और मैं पीछे जाकर छिप जाऊंगा और छिप कर अगर नकुल ब्रह्मचारी मुझे बुलाते हैं अपने पास में और मेरा गुप्त मंत्र है, मेरा गुप्त मंत्र अगर बताते हैं तो मैं मान लूंगा कि नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में शचिनंदन गौर हरि लीला कर रहे हैं। तो नकुल ब्रह्मचारी प्रवचन कर रहे थे और शिवानंद सेन पीछे कहीं दूर बैठे हुए थे, दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे और इंतजार कर रहे थे। उस समय नकुल ब्रह्मचारी को अचानक प्रेरणा मिली हृदय से और अपने दो सेवकों से बोले शिवानंद सेन पीछे बैठे हुए हैं, जाओ आप चार डिवोटीज मिलके उनको यहां अंदर लेकर आओ। तो चार व्यक्ति जाकर ढूंढने लगे, क्योंकि वो जानते नहीं थे शिवानंद सेन कौन है, कभी मिले नहीं थे। वो पीछे जाकर पुकार रहे थे शिवानंद सेन शिवानंद सेन, कहां पर है शिवानंद सेन, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। और शिवानंद सेन स्वयं बाहर आ गए और वो दोनों ब्रह्मचारी उनको नकुल ब्रह्मचारी के पास ले गए और नकुल ब्रह्मचारी को उन्होंने प्रणाम किया, नकुल ब्रह्मचारी ने भी प्रणाम किया और नकुल ब्रह्मचारी बोले आपके मन में मेरे बारे में संदेह है, मैं जानता हूँ आपका मंत्र है गौरंग, आपका चार अक्षरी मंत्र है, प्रभुपाद जी बोलते हैं या तो गौरंग या राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ये चार अक्षर, अब अपनी संशय को त्याग दो। तब शिवानंद सेन मन में समझ जाते हैं कि वास्तव में नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में भगवान शचिनंदन गौर हरि विशेष लीला कर रहे हैं। ऐसे एक बहुत विशेष भक्त थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शिवानंद सेन के एक भतीजे थे जिसका नाम था श्रीकांत सेन। श्रीकांत सेन चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए जगन्नाथपुरी में। श्रीकांत सेन का घर नवद्वीप बंगाल में था और वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। तो जब वे महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ने उनसे कहा अब जब तुम वापस नवद्वीप जाओगे तो भक्तों को मेरा संदेश देना, आप भक्तों से कहना कि अगले साल आप जगन्नाथपुरी मत आइए रथ यात्रा के लिए। हर वर्ष करीब 200 भक्त आते थे रथ यात्रा के लिए, लेकिन इस वर्ष उनको बताया गया कि आप मत आना क्योंकि मैं स्वयं जगन्नाथपुरी आ रहा हूँ, सॉरी मैं स्वयं नवद्वीप आऊँगा, इसलिए आप श्रीवास ठाकुर को और सब भक्तों को बोलो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं आ जाऊँगा पौष के महीने में यानी दिसंबर जनवरी के समय। तो श्रीकांत सेन ने संदेश दिया और सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। जुलाई का महीना था रथ यात्रा, जैसे अगले महीने 16 जुलाई को रथ यात्रा है, शायद आप में से कई भक्त जा रहे होंगे जगन्नाथपुरी। तो शिवानंद सेन सब भक्तों को ले जाते थे, यहाँ पर दीनवत्सल प्रभु जी ले जाते हैं सब भक्तों। तो शिवानंद सेन को समाचार मिला कि इस साल आप रथ यात्रा के लिए मत आना, स्वयं शचिनंदन गौरंग महाप्रभु नवद्वीप आ रहे हैं। तब सब डिवोटीज बहुत प्रसन्न हो गए कि महाप्रभु आ रहे हैं। तो जुलाई में नहीं गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन महाप्रभु आए नहीं। जगदानंद और शिवानंद सेन तैयारी कर रहे थे अब भगवान आएंगे, उन्होंने उनके लिए बहुत सारे भोग तैयार रखे थे, लेकिन भगवान आए नहीं। दोनों बहुत निराश हो गए और उस समय एक भक्त आए जिनका नाम था नसीमानंद। एक्चुअली उनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, लेकिन क्योंकि वो नरसिंह भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे इसलिए उनका नाम हो गया नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। नसीमानंद ब्रह्मचारी वहां पर आए, पूछे जगदानंद शिवानंद, क्या बात है, आपका मुंह बहुत दुखी लग रहा है, आप निराश लग रहे हैं, क्या बात है? शिवानंद सेन बोले, भगवान ने हमें प्रॉमिस किया। चचिनंदन गौरंग महाप्रभु आ रहे थे, बोले आएंगे लेकिन आए नहीं। नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बोले, आप चिंता मत करो, मुझे 3 दिन का समय दो, मैं अभी भगवान को यहाँ आने के लिए निमंत्रण करता हूँ। शिवानंद सेन और जगदानंद पंडित जानते थे कि नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बहुत एडवांस डिवोटी हैं, भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। तो आँख बंद कर रहे थे, 2 दिन तक ध्यान लगाया और सबने पूछा, क्या हुआ? भगवान अभी आ रहे हैं, अभी पानीहाटी तक आ गए हैं और जस्ट नवद्वीप पहुँचने वाले, इसलिए आप सब तैयारी करो, सब सामान ले आओ, मैं अपने हाथों से भगवान के लिए चावल व्यंजन और मिष्ठान मिठाइयाँ बनाऊँगा, चिंता मत करो। तब नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी को सब सामग्री लेकर आए और वो भोग बनाने लगे। मानसिक रूप से हमने 3 प्लेट बनाई, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा भगवान गौरंग महाप्रभु के लिए और तीसरा उनके इष्ट देव नरसिंह भगवान के लिए, क्योंकि वो नरसिंह भगवान के पुजारी थे, इसलिए 3 प्लेट बनाए और उन्हें ध्यान आंखें बंद किए और भगवान से आमंत्रित किया कि आप आइए। देखे शीघ्र आसी बसीला चैतन्य गोसाई, 3 भाग खैला किचु अवशिष्ट नहीं। उन्होंने देखा ध्यान में गौरंग महाप्रभु आए, अपना प्लेट खाया, नरसिंह भवन का खाया और जगन्नाथ का भी खा लिया। आनंद विवल प्रद्युम्न, उनको बहुत खुशी हुई, वो भगवान आए, बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ साथ हाहाकार करने लगे। वो बोलने लगे, हे भगवान, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप? जगन्नाथ तुम्हारा एक खाओ तारा भाग, आपने जगन्नाथ का प्लेट खा लिया, कोई बात नहीं, आप और जगन्नाथ एक ही हो, लेकिन नरसिंह मेरा भोग के ने करे उपयोग, मेरे इष्ट देव नरसिंह भगवान का भी प्लेट आपने खा लिया। नरसिंह मेरा हैला जानी आज उपवासी, ठाकुर उपवासी रहे जिए कैचे दास। मेरे स्वामी नरसिंह भगवान ने कुछ नहीं खाया और अब वो उपवासी है तो मैं भी उपवासी रहूंगा, मैं भी कुछ खा नहीं पाऊंगा। आपने अपना प्लेट स्वीकार किया बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे का कोटा नहीं खाना चाहिए। तब नरसिंह ब्रह्मचारी मन में ऐसे सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ और नरसिंह भगवान तीनों एक हैं, और नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी को यह बात सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्लेट स्वयं स्वीकार कर ली। और बाकी भक्त पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ? बोले, तुम्हारे महाप्रभु आए। शिवानंद सिंह पूछ रहे हैं, क्या बात है, फिर आए तो अच्छा है, इसमें क्या है, व्हाट इज द लॉस? ते हो कहे, देख तुम्हारा प्रभु रा स्वभाव, आपके प्रभु का व्यवहार देखो, 3 जनेरा भोगते हो एकला खाईला, 3 जनों का भोग स्वयं खा लिया, जगन्नाथ नरसिंह उपवासी हैला, और मेरे लॉर्ड नरसिंह भगवान और जगन्नाथ फास्टिंग कर रहे हैं। अब सोचिए जगन्नाथ के लिए फास्टिंग करना कितना जगन्नाथपुरी में भगवान 56 भोग स्वीकार कर दिन में कई बार, और वो ऐसे 1 कटोरी 2 कटोरी नहीं, सब कुछ बड़े बड़े मटके ऑफरिंग होते। तब शिवानंद सेन सोच रहे थे कि नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी एडवांस डिवोटी हैं, पता नहीं शायद वो एक्सटेसी में बोल रहे होंगे, भगवान आए कि नहीं क्या भरोसा, कुछ तरीका नहीं है सर्टिफाई करने का। तब नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बोले, अब तुम फिर से चावल ले आओ, मैं फिर से प्लेट बनाऊंगा, इस बार चैतन्य महाप्रभु को नहीं दूंगा, सिर्फ नरसिंह भगवान के लिए। तो फिर से प्लेट बनाई उन्होंने। अब सारे भक्त सोच रहे थे कि हम गए नहीं जगन्नाथपुरी और भगवान भी आए कि नहीं, पता नहीं, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बोल रहे हैं कि वो ध्यान में आए थे और 3 प्लेट खाए थे, लेकिन हमने तो देखा नहीं। तो वे सब चैतन्य महाप्रभु से मिलने अगले वर्ष जुलाई में रथ यात्रा में फिर गए, और इस बार भगवान बात कर रहे थे भक्तों से, पूछ रहे थे सब भक्त कैसे हैं, कौन भक्त कैसे हैं। फिर कहने लगे, पिछले साल पौष के महीने में नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने बहुत अच्छा भोजन अर्पण किया, मुझे इतना अच्छा लगा, कबू नहीं खाई ऐसे मिष्ठान व्यंजन, मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी नहीं खाया। फिर सारे भक्तों को विश्वास हो गया कि नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बहुत ही सिंसियर डिवोटी हैं और बहुत एडवांस डिवोटी हैं। तो इस तरह महाप्रभु अलग अलग भक्तों पर अलग अलग तरीके से कृपा करते थे और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे। महाप्रभु सर्वशक्तिशाली भी हैं। रथयात्रा के समय आप जानते हैं, जब रथयात्रा के बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है बालागंडी। आप में से जो लोग जगन्नाथ पुरी गए हैं आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का रथ थोड़ी देर के रोका जाता है और अनेक भक्त अनेक प्रकार के मिष्ठान और भोजन प्रसाद अर्पण करने आते हैं भगवान को। उस समय राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने जाते हैं। महाप्रभु एक पेड़ के नीचे लेटे होते हैं। राजा प्रताप रुद्र बहुत ही सादे वस्त्र धारण करके उनके पैरों की मसाज करते हैं और राजा को श्लोक सुनाते हैं भागवतम गोपी गीत। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीड़ितम कल्मशाशनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती ये भूरिदा जना भूवि गृणंती ये भूरिदा जना। तो वे श्लोक गा रहे थे और महाप्रभु इतने खुश हो गए, वो उठे और बोले भूरिदा भूरिदा, भूरिदा मतलब उदार, आप बहुत उदार हो, आप कौन हो? आचंबित तो पियाईल मोर कृष्ण लीला अमृत, न जानते हुए आपने मुझे आकर कृष्ण कथा सुनाई, आप कौन हो? राजा प्रताप रुद्र नम्रता से बोले, राजा कहे अमित उमर दासेर अनुदास। ये पिछली बार मैंने बताया था आपको, भृत्यर भृत्य कर ए मोराश, मैं आपके दासों का दास हूं। इस तरह से राजा प्रताप रुद्र ने अपना परिचय दिया। थोड़ी देर बाद फिर रथ चलने की तैयारी हुई। भगवान जगन्नाथ के सब भक्त महाप्रभु के पार्षद रथ की रस्सियों से खींच रहे थे लेकिन रथ नहीं चला। फिर कुछ हाथियों को बुलाया गया, हाथी के साथ बांधकर उनको रथ को खींचने का प्रयास किया लेकिन रथ नहीं चला। हाथी के महावत उनको अंकुश से पीट रहे थे लेकिन रथ नहीं चल रहा। फिर कुछ पहलवानों को बुलाया गया कोल्हापुर के और रथ को खींचने का प्रयास किया फिर भी रथ नहीं चला। अंत में महाप्रभु आए, उन्होंने सब हाथियों को भेज दिया, सब पहलवानों को वापस भेज दिया और स्वयं पीछे गए और जस्ट अपने सिर से हल्का सा स्पर्श किया। जैसे उन्होंने रथ के पहिए को स्पर्श किया, कविराज गोस्वामी बोलते हड़ हड़ करी रथ ढाई लचाई, रथ चलते हुए गुंडीचा पहुंच गया भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से। ऐसे हम अपने प्रयास से कितने भी आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करें, अपनी साधना, अपने शास्त्रों का अध्ययन, ये सब चीज़ें जरूरी हैं लेकिन इससे हमारा रथ नहीं चलेगा। जब महाप्रभु के चरण कमल की कृपा प्राप्त होगी, जब उन भक्तों की कृपा प्राप्त होगी जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, तो उनकी कृपा से हमारे भक्ति का रथ तेजी से दौड़ते हुए गुंडीचा यानी बैक टू गॉडहेड पहुँच सकेगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम इसी जीवन में शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर सकें और ये शरीर छोड़ने के बाद वापस कृष्ण के धाम लौट सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अंत में प्रबोधानंद सरस्वती का एक सुंदर वाक्य कहना चाहूँगा। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। दंते विधाय त्रिणकम पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेत दह ब्रियम हे साधव सकलेम वे विहाय ब्रूयत गौरंग चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए कि हे साधु हे संतों, ऐसे कहकर पापी से पापी व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनके दांतों के बीच में तिनका रखकर प्रणाम करते हुए कहना चाहिए कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सब कुछ त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्वीकार करो। यही गौरंग महाप्रभु के चरण कमल ही एक आश्रय है। शांतिपुर में वो स्थान है जहाँ पर गौरंग और नित्यानंद एक बार गौरीदास पंडित से मिलने आए थे अपने हाथों में उनके नौका को चलाते हुए। ऐसे गौरंग महाप्रभु की कृपा जो है उनके चरण कमल का आश्रय है, वो नौका के समान है जो हमको भवसागर के पार ले जा सकता है। वही चरण कमल हमारे एकमात्र धन है, वही हमारी संपत्ति है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल रहें। और प्रबोधानंद सरस्वती अंत में बताते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का आस्वादन कर रहे हैं वास्तविक अमृत का पान कर रहे हैं, और उसको छोड़कर जो कोई व्यक्ति संसारी सुख का प्रयास कर रहे हैं वो ऐसे मानो गधों के मूत्र में स्नान कर रहा। बहुत स्ट्रांग शब्द है लेकिन सत्य कड़वा है कि महाप्रभु के चरणों को छोड़कर और कोई भी इच्छा रखना वो ऐसे है जो जैसे मैंने पहले बताया, हमें गौरंग के चरणों से निकलने वाली अमृत धारा गंगा को स्वीकार करना है और उनकी कृपा से हर समय कृष्ण नाम पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें श्रील प्रभुपाद और गौरंग महाप्रभु से कि उनके चरण कमल हमेशा हमारे हृदय में रहें। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अब एक बार जोर से बोलिए जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। अभी एक हम फिल्म देखेंगे, यहाँ पर मूवी देखेंगे।
हरे कृष्णा।